नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिस खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आतंकी आरिस खान को मार्च 2021 में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच द्वारा सुनवाया गया। इस मामले में बेंच ने अपना ऑर्डर अगस्त महीने में रिजर्व कर दिया था। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा साउथ दिल्ली के जामिया नगर में सितंबर 2008 में आतंकियों से हुए एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए। जामिया नगर में दिल्ली पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर राजधानी दिल्ली में 5 बम धमाकों के कुछ दिन बाद हुआ था। इन बम धमाकों में 39 लोग मारे गए थे, जबकि 159 लोग घायल हुए थे। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से असम के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बुधवार रात पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हैं। हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 21 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। NDRF, SDRF और रेलवे की टीमों ने सुबह 2 बजे तक बचाव अभियान पूरा कर लिया। तब से रघुनाथपुर स्टेशन पर बहाली का काम चालू है। रेलवे की प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि बुधवार रात करीब 9:40 पर जब ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो इंजन ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। डिरेल हुई ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया, ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, मैं बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से एक ब्रेक लगा और गाड़ी में धीरे धीरे झटके आने लगे, फिर एक बड़ा झटका लगा, मैं उसी समय बेहोश हो गया। 5 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैंने पानी से आंखों पर छींटे मारे, मुझे नहीं पता कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक क्यों मारा। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक को फरमान दिया है कि 15 से 31 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु को रोजाना 3000 क्यूसेक पानी सप्लाई करे। 1 से 15 अक्टूबर के दौरान कर्नाटक को पानी का फ्लो मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है। CWRC चेयरमैन विनीत कुमार गुप्ता का कहना है कि बुधवार को ही मीटिंग में सभी पहलुओं पर गौर किया गया। ये देखा गया कि कर्नाटक के पास कावेरी का कितना पानी है। उनका कहना है कि कर्नाटक को साफ हिदायत दे दी गई है। इस मसले पर अगली बैठक 30 अक्टूबर को आयोजित होगी। उनका कहना था कि मीटिंग के दौरान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर भी गौर किया गया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच एक्स ने इसराइल पर हमले के बाद से आतंकी समूह हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट को हटा दिया। कंपनी के CEO लिंडा याकारिनो ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्स पर हमास से संबंधित सामग्री को हटा दिया गया। याकारिनो ने बृहस्पतिवार को बताया कि सोशल मीडिया मंच पर अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक्स द्वारा किए गए प्रयासों की रूपरेखा तैयार की गई है। यूरोपीय संघ के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी मांगी थी कि इसराइल हमास युद्ध के दौरान एक्स EU के डिजिटल नियमों का कैसे अनुपालन कर रहा है। इसके जवाब में याकारिनो ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में कहा, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक एक्स ने हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट की पहचान की और उन्हें सोशल मीडिया मंच से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कुल 23 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, खेल, पर्यटन, आपदा शमन और बागवानी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें 21,398 पॉली हाउस, सेब के बागान, सड़कों के दोहरीकरण के 5 कार्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्य और 32 पुलों का निर्माण शामिल है। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद सुप्रिया सूले ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भारत के रुख पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सूले ने कहा कि इसराइल का समर्थन करके नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अलग रास्ता चुन लिया। उनसे पूछा गया था कि हमास के इसराइल पर हमले के बाद छिड़ी लड़ाई के बीच केंद्र सरकार इसराइल का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस फिलिस्तीनियों के अधिकार की बात कर रही है। सूले ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति अब तक समान रही है। फ्रांस को उम्मीद है कि 2030 तक 30,000 से अधिक भारतीय छात्र उससे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आएंगे। कोलकाता स्थित फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत दिदियर तलपेन ने इसकी जानकारी दी। तलपेन ने कहा कि वर्तमान में ये संख्या 10,000 से कम है और इस आंकड़े को 3 गुना करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत ने बुधवार को यहाँ फ्रांस की यात्रा चुने 2023 कार्यक्रम में कहा, मैं छात्रों को बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस सरकार की ओर से विभिन्न अनुदान मिलते हैं। चूंकि हमारी सरकार सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का अधिकांश खर्च वहन करती है, इसलिए फ्रांस में उच्च शिक्षा आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।